समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, नमस्कार। अ वेरी गुड डे टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद एज माय को होस्ट इज देयर करिश्मा एंड शगुन चोपड़ा। वेल लिसनर्स, फॉर यू टुडे फर्स्ट विल प्रोवाइड यू द न्यूज, द रेलेवेंट न्यूज, ऑल द नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स एज वेल एज आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। वेरी इंटरेस्टिंग टुडे द टॉपिक, विल टेल यू अबाउट दैट इन अ फ्यू मिनट्स एक्चुअली। रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स एंड एट्रिब्यूट्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सो मेक श्योर दैट यू बी विद अस फॉर रफली हाफ एन आवर, वेल 29 मिनट्स टू बी प्रिसाइज नाउ, एंड वी हैव ऑल ऑफ दिस लाइंड अप फॉर यू ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी फर्स्ट बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता ही, प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता भी बन चुका है। उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना कोष का शुभारंभ किया।
President Draupadi Murmu addresses a special session of Uttarakhand Legislative Assembly, hails state's progress in education, health and human development.
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में चेवेल्ला के पास ट्रक के बस से टकराने से 19 लोगों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया।
कैंपेनिंग फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस इज इन फुल स्विंग बिफोर कमिंग टू एन एंड टुमारो इवनिंग।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान सक्रिय रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है।
Congratulatory messages pour in for the Indian women's cricket team on their maiden World Cup triumph. And me and Karishma, we are here. This is our segment Dateline India. And today, listeners, we are talking about, it is actually International Day of Biosphere Reserves. And listeners, actually, we would like to start on this particular note. Well, there is the urgency of tackling environmental issues, and this becomes clearer with each passing year and passing day, actually. Now, I feel we only have one planet, and listeners, it is in danger. Our relationship with nature and with other living beings, it needs a radical rethink. In order to address the issues which are arising and cropping up, we need to design and then create a truly shared vision about this. And today, listeners, we are going to discuss this issue in the context of International Day of Biosphere Reserves. Well, listeners, biosphere reserves, they have shown that it is possible to live in this world while also establishing a sustainable and harmonious relationship with nature.
बिल्कुल, लेकिन श्रोताओं, अब ये समझना जरूरी है कि अब जीव मंडल क्या है। श्रोताओं, जीव मंडल पृथ्वी पर जीवन का वैश्विक क्षेत्र है, एक पतली परत जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल परस्पर क्रिया करके सभी जीवित जीवों का पोषण करते हैं। ये सबसे गहरी समुद्री खाइयों से लेकर वायुमंडल में ऊंचाई तक फैला हुआ है, जहां पक्षी उड़ते हैं, और इसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े पौधे और जानवर तक सब कुछ शामिल है।
यस करिश्मा, जीव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व, द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इनविटेशन टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन दीज स्पेसेस टू बिल्ड जेन्युइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवरीवेयर विद ऑल्सो फुल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड फॉर द लिविंग वर्ल्ड। So, designated by UNESCO, this day, International Day for Biosphere Reserves, it underscores the importance of biosphere reserves as vital platforms for advancing scientific research. Also, number two, preserving ecological and cultural diversity. Third, रीजन बीइंग फॉस्टरिंग अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द प्लैनेट करिश्मा।
बिल्कुल, और भारत दुनिया के साथ मिलकर इस दिन को मनाता है और विविध भूभागों, पहाड़ों, जंगलों, तटों और द्वीपों में फैले अपने बायोस्फीयर रिजर्व के मजबूत नेटवर्क को उजागर करता है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय पहलों और यूनेस्को मानव तथा बायोस्फीयर कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचों के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण तथा लोगों और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण जीवन को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।
वेल, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट बायोस्फीयर रिजर्व्स। यू आर गोइंग टू इलैबोरेट इवन मोर। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स, दे आर द एरियाज आइडेंटिफाइड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Very good idea. Learning places for sustainable development. They are sites for testing interdisciplinary approaches to understanding and also managing changes and interactions between social and ecological systems, including conflict prevention and management of biodiversity. And biosphere reserves, they include terrestrial, marine and coastal ecosystems, and each site promotes solutions reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use.
बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जहां वे स्थित हैं। बायोस्फीयर रिजर्व पारंपरिक संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ये वे स्थान है जहां पर 27 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। शहर से लेकर सवाना तक, पहाड़ की चोटियों से लेकर मैंग्रोव तक, इनका आकार एक छोटे से द्वीप समुदाय से लेकर महाद्वीपों तक फैले विशाल और गलियारों तक विस्तृत है। इन बायोस्फीयर रिजर्व में लोग जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को कहीं न कहीं पुनः स्थापित करने की कोशिश करते हैं।
यस करिश्मा, राइटली सेड। एंड वेल, बायोस्फीयर रिजर्व्स दे आर द स्पेशल एनवायरनमेंट्स फॉर बोथ पीपल एंड द नेचर एंड आर लिविंग एग्जांपल्स ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर दे कैन कोएग्जिस्ट व्हाइल रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स नीड्स। So, biosphere reserves, they consist of three main zones. Let me tell our listeners about that. First one being core, second one buffer, and third one transition. These areas, they are responsible for systematic conservation of landscapes and also the ecosystems overall, movement of people and monitoring and training and related education.
बिल्कुल, और यूनेस्को के अनुसार 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें 22 सीमा पार स्थल शामिल हैं। भारत में वर्तमान में 6000 वर्ग किलोमीटर में फैले 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैले नीलगिरी के नीले पहाड़ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात और सबसे छोटा असम में है।
ग्रेट।
जैव मंडल रिजर्व ऐसे स्थल होते हैं जहां भूमि, तटीय क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है। इन्हें यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है। किसी क्षेत्र को विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल होने से पहले कुछ तय मानकों और शर्तों को पूरा करना होता है। ये रिजर्व पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता की सुरक्षा करने और पर्यावरणीय क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है और वार्षिक वन वृद्धि में 30वें स्थान पर। देश में वर्तमान में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, जो 91,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हैं, जिनमें से 13 को यूनेस्को ने मान्यता दी है। भारत जैव मंडल रिजर्व के प्रबंधन और संरक्षण में अग्रणी देशों में है। यह न केवल जैव विविधता की रक्षा करता है बल्कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है और सतत पारिस्थितिकी प्रबंधन को भी बढ़ावा दे रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और ग्रीन इंडिया मिशन के माध्यम से भारत इन प्रयासों से जैव मंडल रिजर्व को मजबूती दे रहा है। भारत जैव विविधता और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विश्व को यह संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा और समुदायों के सशक्तिकरण से ही सामूहिक विकास संभव है। परिक्रमा के लिए भानु के साथ अमन यादव, दिल्ली।
Well, yes, that was our detailed report by our correspondent. And these areas, they demonstrate India's commitment to conserving biodiversity and fostering harmonious living between people and nature through both national initiatives and international frameworks. And as we celebrate this year's International Day of Biosphere Reserves, well, we reflect on the ongoing efforts to enhance the resilience of these ecosystems in the face of global challenges. And through the active participation, well, of local communities and of stakeholders, we continue to promote solutions that are both locally adapted and also globally relevant.
और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
करिश्मा, लेट्स टेक आवर लिसनर्स फर्स्ट टू पुदुचेरी। सो एंड आफ्टर एन ईयर ऑफ क्लोजर फॉर रेनोवेशन, पुदुचेरीज आइकॉनिक बोटानिकल गार्डन, इट हैज स्प्रंग बैक टू लाइफ, वेल ग्रीनर, brighter and more inviting than it was actually even then. The makeover of this botanical garden, it was carried out by the Puducherry Smart City Development Limited at a cost of a whopping 9.9 crore rupees and has given the 12 hectare heritage landmark a fresh lease of life. We have a report on this. Let's listen in.
Established in 1826 by French botanist George Samuel Perrotet, the Puducherry Botanical Garden is home to over 2,400 trees representing 213 genera and 293 plant species. The trees are a mixture of indigenous and exotic trees ranging from deciduous to evergreen species, each contributing to the general floral wealth, glory and beauty of the garden. From the tall impressive Kaya senegalensis to the huge cannonball trees and the old and gigantic silk cotton trees, this living museum of biodiversity offers much to each visiting tourist. The fossil park displaying tree fossil specimens amidst the palms and cycads are a rare and unique experience that evoke the curiosity of visitors. After the renovation works, visitors are now greeted by manicured lawns, landscaped pathways, a new amphitheater and a jogging track that winds through the lush greenery. A joy train now chugs along the oval stretch, while battery-operated cars make the garden more accessible for all. The highlight is the dancing musical fountain, which adds a splash of color and melody to the evening ambience. Officials say the renovated space is expected to attract more visitors and become a hub for film and photo shoots, blending the colonial era charm with smart city aesthetics. With its tranquil lawns, tree-lined avenues and renewed vibrancy, the nearly two-century-old botanical garden once again stands as the green heart of Puducherry, ready to welcome locals and tourists alike. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
और अब बात रायपुर की करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास नवा रायपुर में आदिवासी संग्रहालय स्थापित किया गया है। यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को इस संग्रहालय का लोकार्पण किया था। पेश है हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की यह रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बना शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उन आदिवासी वीर नायकों को समर्पित है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अपने प्राणों की आहुति दी थी और अपनी मातृभूमि की अस्मिता की रक्षा की थी। इस संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित तथा प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। आदिवासी समाज के योगदान को देश और दुनिया जाने, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि संग्रहालय में आजादी से पहले के 150 वर्षों के आदिवासी समाज के संघर्ष को दर्शाया गया है।
इसमें आजादी से पहले के 150 से अधिक वर्षों का आदिवासी समाज के संघर्ष का इतिहास दर्शाया गया। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हर बारीकी यहाँ दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
यह संग्रहालय देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है जिसमें अत्याधुनिक VFX टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शन सिस्टम, डिजिटल स्क्रीन और मोबाइल पर QR कोड स्कैन करने की सुविधा उपलब्ध है। इससे यहाँ आने वाला व्यक्ति हर कथा को डिजिटल माध्यम से अनुभव कर सकेगा। संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों जैसे हलबा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भूमकाल, झंडा सत्याग्रह, सोनाखान विद्रोह और जंगल सत्याग्रह की जीवंत झलक दिखाई जाएगी। इन ऐतिहासिक आदिवासी विद्रोहों को 14 सेक्टरों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है ताकि दर्शक हर संघर्ष और उसकी प्रेरक गाथा को समझ सके। संग्रहालय परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह का भव्य स्मारक भी बनाया गया है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
और शगुन अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
एंड करिश्मा, वेल इंडिया विंस विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एज द टीम सेज वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस दे आर पोरिंग इन फॉर द इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम एंड द मेडन वर्ल्ड कप दे हैव वन। Also, let me mention President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi, they have congratulated Team India on their remarkable victory, of course. So the President called it a watershed moment which will take them to still higher performances. Well, great praise. And praising the players for their determination and inspiring performance, she said, the President said, the girls have made India proud and rightly so. The Vice President, let me tell you about that, said the perseverance, skill and indomitable spirit of the team have inspired millions and brought immense glory to the nation, joy to the whole world. Well, to us as well, and welcome, others welcome. As well. And in his message, the Prime Minister, let me tell you about that also, the Prime Minister described it as a spectacular victory that will motivate future champions to take up sports. Mr. Modi said their performance in the final was marked by great skill and confidence. And in his address during Emerging Science and Technology Innovation Conclave in New Delhi, this happened today, the Prime Minister there also, he said that entire country is happy with this achievement of Indian women's cricket team. Right, Karishma?
बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी टीम को बधाई दी है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला समेत कई प्रमुख हस्तियों ने भी भारतीय महिला टीम को जीत की बधाई दी है। भारतीय महिला टीम ने कल रात नवी मुंबई में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को ये ऐतिहासिक जीत दिलाई है। तो शगुन, ये जो जीत है, हर भारतवासी को इसके लिए बधाई, और क्योंकि हर कोई आज गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि जो खुशी, जो उत्साह कल लेके टीम आई है, उसके लिए आज भी सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए।
Of course, Karishma, and there is one thing which Shefali Verma, she shared with us in the, with everybody in the presentation ceremony. She shared that she was included in the team on Monday itself. A week ago, she was called up. She was playing domestic cricket. And then Shefali Verma coming in and then performing like that. It was just incredible to see her with the bat and the ball as well. So a great win.
बिल्कुल शगुन, तो इसी गर्व और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
Of course, now after that, on this very high note, let me also give our listeners the business updates. First, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, opened lower today, but after a volatile trading session, ended marginally higher. The Sensex added 40 points to close at 83,978, while the Nifty advanced 41 points to settle at 25,763 in the Indian bullion market. 24-carat gold was trading up at 1,21,700 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 1,49,040 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember the great but unsung freedom fighter, Sagarmal Gopa, who was born on 3rd of November 1900 in the princely state of Jaisalmer, Rajasthan. Sagarmal was the leader of the band Praja Mandal and inspired the people of Jaisalmer and adjoining areas to participate in the freedom struggle. Sagarmal was also a part of Gandhiji's non-cooperation movement in 1921 and called on people of Jaisalmer to participate in the movement.
Sagarmal's father, Akhyaraj, used to work in the court of Maharawal Jawahar Singh, the then ruler of Jaisalmer. During his youth, he noticed the indifferent attitude shown by his home state towards the freedom movement in British India. This troubled him greatly, and within him, slowly, grew a flame of passion for revolt. Jawahar Singh had prohibited the printing and reading of journals in the princely state.
Defying the Maharaja, Sagarmal recorded the atrocities of Jawahar Singh in his book Jaisalmer Ka Gunda Raj and motivated the public to join the cause of freedom by publishing numerous books.
Sagarmal fiercely opposed the anti-people policies of the ruler of Jaisalmer state, due to which the princely states of Jaisalmer and Hyderabad restricted his entry into their domains.
Sagarmal migrated with his family to Nagpur, but when Akhya Raj died, Sagarmal returned to Jaisalmer to perform last rites of his father on 25th May 1941. Immediately, he was arrested on charges of treason and sentenced to rigorous imprisonment of 6 years. He was tortured in prison for years, and it is alleged that he was burned alive in prison. He died on 4th April 1946.
In 1986, the government of India issued a postage stamp in Sagarmal Gopa's honour. India is forever indebted to the selfless service and sacrifice of freedom fighters like him.
Today, we also remember freedom fighter and social activist Annapurna Maharana on her birth anniversary. She was born to Odisha's noted freedom fighters Rama Devi and Gopabandhu Chaudhary on 3rd November 1917. Annapurna joined the freedom struggle at an early age of only 14 years. She was an avid Gandhian and accompanied Gandhiji in his historic Harijan Padayatra from Puri to Bhadrak in 1934.
Annapurna organized the Shanti Sena and Maran Sena in the Bari area soon after the arrest and imprisonment of all well-known national leaders in the wake of the Quit India movement of 1942. She staged a protest along with a large number of villagers in September 1942 at Kalamatia in Cuttack district, where 4 persons were killed by police firing and several others were injured.
She protested against the imposition of punitive taxes at Bari and 3 other villages in the aftermath of Kalamatia firing. She was detained in the Cuttack jail for 2 years and was arrested and jailed again for 4 months for violating an externment order in 1944.
After independence, Annapurna spent her time in social service and worked for the empowerment of women and children. She also participated in the Bhudan movement of Acharya Vinobha Bhave. She set up a school in Raigarh district for tribal children. Annapurna Maharana passed away on the 31st of December 2012 at a home in Cuttack, Odisha. We salute the spirit and love for the nation of this great freedom fighter.
और श्रोताओं, इसी के साथ हम याद कर रहे हैं मनमोहन कृष्ण को, जिनकी आज पुण्यतिथि है. मनमोहन कृष्ण हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे. फिल्मों से पहले वे रेडियो में भी गायक रहे और उद्घोषक भी रहे, जहां से उन्हें लोगों की सराहना मिली और फिर वो फिल्मों की ओर आए. मनमोहन कृष्ण ने अपने अभिनय से, गंभीरता से और भूमिकाओं से नई पहचान बनाई. वे विशेष रूप से बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा की फिल्मों में भी काफी नजर आए.
Yes, Karishma, and he worked in the Hindi films for 4 decades, but mostly as a character actor. And it's interesting to note over here, listeners, that he started his career as a professor in physics and held master's degree in physics. How great is that? And as Karishma was telling us, he anchored the radio show, which was a Fulwari and a singing contest it was basically. And listeners, for you, We have picked up a dialogue of his. This was with the other actor, Om Prakash. Let me mention that for you. This is from the movie Khandan. Let's listen to his voice.
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दे. एक टुकड़ा मेरे हिस्से वाले घर में रहे और दूसरा आपके.
A range of emotion that he displays by his voice. So wonderful to listen to him.
कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है.
And also, it's interesting to note over here that the production Pardesi of 1957, and this was nominated for the Golden Palm at 1958. Cannes Film Festival. So many great things. We were remembering Manmohan Krishna.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं पृथ्वीराज कपूर को, जिनका जो भारतीय सिनेमा और रंगमंच के बेहद सम्मानित कलाकार थे. उन्होंने थिएटर, मूक फिल्म और बोलती फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई. उनकी मजबूत आवाज और शाही अंदाज हर किरदार को खास बना देता था. और इसी के साथ आपको बता दें कि पृथ्वीराज कपूर की कई प्रसिद्ध फिल्में रही हैं, जिसमें आवारा, सिकंदर और सबसे ज्यादा मुगले आजम लोगों को याद रही है. तो मुगले आजम से आइए सुनते हैं उनके फिल्म का ये डायलॉग.
हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते. हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते.
What a voice. What can we say about that? Just amazing. And you can actually sense in his voice the authority, the style. It speaks for itself. Well, listeners, he actually began his acting career in theaters, and he joined the Imperial Films Company in Mumbai nowadays, in the late 1920s, and starring in India's first sound film, Ardeshir Irani's Alamara. This was 1931, The Light of the World, and he demonstrated his greatest asset, a powerful, booming voice, which we can, of course, we can sense it in this particular dialogue that we chose to listen to.
बिल्कुल. और आपको बता दें श्रोताओं कि अपने लंबे और शानदार अभिनय जीवन के लिए उन्हें कई बड़े सम्मान भी मिले. उन्हें पद्म भूषण दिया गया, भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था.
And करिश्मा, the artist, the voice, it will forever stay with us, forever to stay. Listeners, today, let me also talk about a musician, composer, arranger, and a conductor, and a band leader. Very, very unique songs he has given to the music industry, Quincy Jones. Well, during his 7-decade career, he received 28 Grammy Awards, and the song which I have chosen, this was very, very famous, Karishma, at that particular time as well. And Michael Jackson, he starred in this particular song, and there were other singers as well. This song, this is We Are the World.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
Well, this was a humanitarian song which was then created by him.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बेहद प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत को. उनका असली नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कोडालकर था. बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था, और ऐसा माना जाता है कि उनका जो बचपन था वो काफी मुश्किलों में बीता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और संगीत को ही अपना सहारा बना लिया.
How wonderful.
लक्ष्मीकांत ने शुरुआत में बताया जाता है कि उन्होंने वाद्य यंत्र बजाना सीखा था. बाद में उनकी मुलाकात प्यारे लाल से हुई, और दोनों ने मिलकर फिल्म जगत में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के नाम से कई संगीत बनाए.
जी,
और यह जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल संगीतकार जोड़ियों में गिनी जाती है. तो आइए सुनते हैं इनका एक संगीत.
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है.
Well, truly said, and that essence is carried, that हमारी ही कहानी है जिंदगी तो, तेरी और मेरी. Beautiful music that they have created, Lakshmikant Pyarelal, and we were telling you about Lakshmikant. Listeners, today it's also Amartya Sen's birthday. Well, he was born today, and he has also received the Nobel Prize nomination for his contributions to welfare economics. And he was born in Shantiniketan, Bengal, and his father was also a professor in Dhaka, and where he received his first education. So One focus of his was research on how individuals' values can be considered in collective decision making. And with that, listeners, we now have to end the program. Thank you so much for tuning in.
Namaskar. Namaskar.